जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजगचारी अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदीष्टवाइन ग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोसेस कॉन्फाउंडर आचार्य शिव दि होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम सिखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, श्लोक संख्या 19। मेरे पीछे बोलिए। धर्म उवाच कच्चिन् भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छाया सीम्लायते सन्मुखेन आलक्षये भवतीम् अन्तराधे दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब धर्म उवाच कच्चिन् भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छाया सीम्लायते सन्मुखेन आलक्षये भवतीम् अन्तराधे दूरे बंधुम शोचसि कंचनम् धर्म उवाच कच्चिन् भन्द्रे नामैमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मन्तराधे दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनम् शब्दार्थ बोलिए। धर्मः उवाच, धर्म ने पूछा, कच्चित् क्या भद्री महोदया अनामयम् स्वस्थ एवं प्रसन्न आत्मनः स्वयं ती तुमको विच्छाया असि शोक की छाया से आवृत प्रतीत होती हो, म्लायत श्याम रंग की ईसत कुछ कुछ मुखेन मुख्यमंडल से आलक्षये तुम दिखती हो, भवती तुमको अंतराधिम आंतरिक व्याधि दूरे दूर स्थित बंधुम मित्र के विषय में सोचसी चिंता कर रही हो, कंचन कोई अम्ब हे माता। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप काली पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंता ग्रस्त हैं, हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के लोगों के चेहरों से ही उनके मनों की बात जानी जा सकती है। तो प्रभुपाद जी के जो है तात्पर्य के अभी तीन वाक्य हमने पढ़े हैं। तो पहला वाक्य है प्रभुपाद जी का कि विश्व भर के सब लोग चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि श्लोक में सबसे पहली बात धर्म ने पृथ्वी से पूछा क्या कि हे भद्रे ना तुम स्वस्थ तो हो, अनामय तुम स्वस्थ तो है। तो जो व्यक्ति चिंतित होता है तो वो स्वस्थ नहीं हो सकता है ना। तो ये प्रश्न कर रहे हैं तो कलयुग का ही लक्षण है। परीक्षित महाराज के देखते देखते ये घटना हो रही है। तो हम जानते हैं कि प्रसंग क्या चल रहा है कि परीक्षित महाराज को जैसे पता चला कि उनके राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया है तो इस समाचार से वो प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि कलयुग का दमन करने के लिए वे पूरे पृथ्वी में दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। तो उनकी जानकारी में और उनके जो है देखने में एक घटना आई। अब ये जो घटना है इसको केवल परीक्षित महाराज देख रहे हैं और कोई नहीं है ना? एक बैल है और एक गाय है। तो बैल गाय से पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न तो हैं, है ना? तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कलयुग क्या होता है, कोई प्रसन्न नहीं है। कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त हैं, सदैव चिंताग्रस्त हैं और किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। या तो मानसिक चिंता या शारीरिक रोग, आधी या व्याधि। आधी का मतलब मानसिक रोग और व्याधि का मतलब शारीरिक रोग, है ना। तो कभी प्रसन्न नहीं होता कोई व्यक्ति अगर उसको शरीर में रोग है या मानसिक रोग है, है? और फिर जो बैल है वो गाय से कह रहा है विच्छायासी मलायते सन्मुखेन, आपके मुख में जो है ना जो कालिमा है, आपके मुख में जो है कुछ मतलब चमक नहीं है, कालिमा मुख में कालिमा है मतलब मुख में चमक नहीं है, तो इससे पता चलता है कि आप चिंतित हैं। तो प्रोफेसर जी क्या कहते हैं, इस युग के लोगों के चेहरों से ही उनके मनों की बात जानी जा सकती है। जब तक कोई व्यक्ति छिपाए नहीं अपने मन की बात, तब तक क्या होता है कि चेहरे में मन की बात प्रकट हो जाती है। चेहरे देख करके, किसी का चेहरा देख करके पता चल जाता है कि इसका मन प्रसन्न है या मन प्रसन्न नहीं है। जो कपटी व्यक्ति है वो अपने मन की बात को छिपा लेता है, तो मन में उसके दुख है लेकिन चेहरे को प्रसन्न बनाता है, है ना, तो वो तो दूसरी बात है। या मन की तपस्या भी बताई गई है कि कभी जो है जब तक आवश्यकता ना हो तो मन का जो दुख है वो प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से चेहरे को प्रसन्न रखते हैं जो तपस्वी लोग होते हैं और अपने मन की चिंता को प्रकट नहीं होने देते हैं सबके सामने, तो वो दूसरी बात है। लेकिन अगर कोई प्रयास ना करे तो चेहरे से पता चल जाता है मन का भाव, कि आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं या मेरे से आप गुस्सा हैं या मेरे से आप दुखी हैं, तो ये जो है ना चेहरे से पता चल जाता है, है ना। तो बैल जो है ना गाय से कह रहा है कि तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम चिंतित हो। इसके बाद फिर आलक्षे भवती मंत्राधीन, ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ आपके आधी है, अंतर आधी। आधी का मतलब मानसिक बीमारी। ऊपर से तो शरीर आपका ठीक है, गाय का शरीर ठीक है, ऊपर से तो ठीक दिखाई दे रहा है, बैल का शरीर जो है ठीक नहीं है। बैल को देखने से पता चलता है क्या क्या है। बैल बैल के शरीर में तीन पैर टूट गए हैं, एक पैर से खड़ा है, तीन पैर टूट गए हैं, तो बैल का तो शरीर ही दिखलाई पड़ता है कि बहुत कष्ट में है। लेकिन गाय का शरीर तो ठीक है, ये अंदर से जो है ना आधी है। तो आलक्षे भवती मंत्राधीन, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके अंदर मन में जो है ना आधी है, मतलब मानसिक कष्ट है। और इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, धर्म जब पृथ्वी देवी जो गाय है वो कुछ उत्तर नहीं देती है, तो अपनी तरफ से पूछ रहे हैं कि क्या आपको इस बात का कष्ट है। तो क्या उन्होंने पूछा, दूरे बंधुम सोचसी कंचनाम्ब, कि हे माता क्या तुम शोक कर रही हो, कोई तुम्हारा संबंधी दूर हो गया है तुमसे, कोई संबंधी तुम्हारा मित्र, कोई अपना जो प्रिय है कोई होगा, बंधु का मतलब कुछ भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, संबंधी भी हो सकता है, तो बंधु ये बड़ा व्यापक शब्द है, इसका बड़ा व्यापक अर्थ होता है बंधु। तो तुम्हारा पति या तुम्हारा मित्र या तुम्हारा पुत्र कोई जो है ना तुमसे दूर हो गया है, इसलिए तुम शोक कर रही हो, है ना। तो धर्म अपनी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इसलिए शोक कर रही हो, क्यों, क्योंकि जो दुखी व्यक्ति है वो उत्तर नहीं दे पा रहा है दुख के कारण। कोई व्यक्ति अगर अपना दुख नहीं बता पा रहा है तो जो पूछने वाला है वो अपनी तरफ से कई प्रश्न पूछता है, उसको विचार करना पड़ता है कि क्या इसलिए तुम्हें दुख है, क्या इस कारण से क्या, उस कारण से ये कारण वो कारण, है ना। तो धर्म जो है ये प्रश्न कर रहे हैं। तो दूरे बंधुम, जिसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, कलयुग का विशेष लक्षण है दूरे बंधुम, ये कलयुग का विशेष लक्षण है। क्या कि कोई भी परिवार एक साथ नहीं रह पाता कलयुग में, ये विशेष लक्षण है कि कोई भी परिवार एक साथ नहीं रह पाता। जीव को उपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से दूर रहता है। जीव का उपार्जन ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है कलयुग में कि पिता अपने पुत्र से दूर रहता है, है? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पिता सवेरे से निकल जाता है और रात में आता है, तो पुत्र अपने पिता का मुंह ही नहीं देख पाता कभी। एक ऐसी भी घटना थी कि 12 साल तक जो बच्चा था अपने पिता का मुंह नहीं देख पाया, क्योंकि बच्चा सोता रहता है जब पिता सवेरे उठ के चले जाता है, है? और जब बच्चा सो जाता है रात में 9-10 बजे, उसके बाद फिर पिता आता है। तो एक बार जो है ना पिता को देखा पुत्र ने, तो माँ से पूछता है कि माँ ये व्यक्ति कौन है, है ना। तो दूरे बंधु, तो पिता अपने पुत्र से दूर रहता है या पत्नी अपने पति से दूर रहती है। पत्नी की नौकरी है, पति की नौकरी है, या पत्नी अगर घर में रहती हो तो पति की नौकरी है तो वो दूर रहता है, कभी शहर में ही दूर रहता है या शहर से बाहर रहता है, है ना। तो ये कलयुग का लक्षण है, प्राचीन युग में नहीं था। ना तो जीविका को उपार्जन कोई समस्या थी, पेट भरना ये कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दाक्षम कुटुम्ब भरणम कलयुग का लक्षण क्या है, यही बहुत बड़ी योग्यता है। क्या कोई व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण करे तो उसकी बहुत बड़ी योग्यता है। तो दूर है बंधु, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बता रहे हैं। और बंधु दूर हो जाते हैं, इसका एक ये भी मतलब है कि बंधु में आपस में कलह हो जाता है। कली, कली का मतलब क्या है, कलह है, लड़ाई झगड़ा। तो भाई भाई अलग हो जाते हैं, पिता पुत्र अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही लड़का की शादी होती है तो अपनी पत्नी के साथ वो हो जाता है और अपने माता पिता को छोड़ देता है। अब कोई माता पिता की सेवा नहीं, जो बहू है वो सास ससुर की सेवा नहीं करती है, बस अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहती है। तो दूरे बंधुम का ये भी मतलब है। कली का मतलब कला, वो कलह पैदा करता है। और यहां तक कि पति पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं, तो ये भी बहुत केस है। तलाक ये जो है शब्द था ही नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में तलाक शब्द है ही नहीं, लेकिन भी तलाक शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित है। और तलाक के लिए जो है कई कोर्ट और कचहरियां अलग से खोले जा रहे हैं तलाक के लिए। तो ये कलयुग का लक्षण है कि पति पत्नी, जबकि प्राचीन काल में पति पत्नी इतना सहयोग करते थे कि वो जन्म जन्म साथ रहते थे, जन्म जन्म साथ रहते थे पति पत्नी। लेकिन जो है कलयुग का ये लक्षण है। तो दूरे बंधुम, तो फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि कलयुग के तीन लक्षण, क्या, एक तो आंतरिक रोग आदि निश्चित है, व्याधि हो सकता है किसी को हो ना हो, शरीर में बीमारी हो या ना हो, बीमारियां भी बहुत हैं कलयुग में, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि शरीर ठीक ठाक है। लेकिन आदि यदि कलयुग अगर आपके शरीर में है तो आपके मन में जो है ना चिंता पैदा करेगा, मानसिक जो है ना चिंता जो है ना जरूर पैदा करेगा। कलयुग का एक निश्चित लक्षण है कि वो मानसिक चिंता जरूर पैदा करेगा, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। एक तो कलयुग का एक लक्षण है और दूसरा प्रियजनों से बिछोह है। अपने जो साथी हैं, अपने जो सहायक हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा कराएगा, तू मैं होती है। कलयुग आ जाता है तो किसी छोटी सी बात में भी जो ना झगड़ा हो जाता है, है ना। तो ये कलयुग का लक्षण है। और तीसरा लक्षण क्या है, चिंता, अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए चिंता। पेट भरने की चिंता, तो ये कलयुग लक्षण है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, आंतरिक रोग, प्रियजनों से बिछोह है तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। ये कतिपय कारण हैं जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जी का तात्पर्य अभी समाप्त हुआ। तो अब हम और विचार करेंगे इस श्लोक में, धर्म जो है क्या है? धर्म देवता है, मतलब पूर्ण शिष्टाचार। धर्म का मतलब क्या है? इसके अंदर पूर्ण रूप से शिष्टाचार हो। तो शिष्टाचार क्या है? कि कोई व्यक्ति अगर अपने पास में है तो क्या, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलना है कि नहीं? मतलब नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं है ना। तो एक जो है ना व्यक्ति जो है ना दूसरे व्यक्ति के पास है, तो ये जो है ना मनुष्य का धर्म है, पशु का धर्म नहीं है। पशु में कुछ नहीं होता है कि क्या हाल चाल है, आप कौन है कि नहीं। लेकिन मनुष्य का जो है ना धर्म होता है, कि अगर आपके पास कोई है तो आप जो है ना पूछें, परिचय पूछें। अब धर्म ने यहां परिचय नहीं पूछा गाय का कि आप कौन है, हे देवी आप कौन हो। ये धर्म जानते हैं कि ये सामान्य गाय नहीं है, हाँ? जानते हैं कि आप सामान्य गाय नहीं है, क्योंकि आगे चल करके पता चलेगा कि वो पूछते हैं कि तुम किस लिए शोक कर रही हो, हाँ? क्या इसलिए शोक कर रही हो कि शूद्र लोग तुम्हारा भोग करेंगे, शूद्र लोग राजा होंगे इसलिए? तो इसका मतलब क्या है कि धर्म देवता को ये पता है कि ये गाय जो है कौन है, पृथ्वी देवी। इसलिए वो ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बछड़ा कहाँ है, तुम अपने बछड़े के लिए शोक कर रही हो। साधारण गाय होती है तो अपने बछड़े की चिंता करती है, बछड़े से अगर दूर होती है या बछड़ा मर गया है तो दुखी। तो उन्होंने नहीं पूछा कि तुम्हारा बछड़ा क्या मर गया है या बछड़ा दूर हो गया है, क्योंकि पृथ्वी देवी अगर गाय होती है तो उसका कोई बछड़ा नहीं है। पृथ्वी देवी जब गाय का रूप धारण कर दी है तो उसके साथ कोई बछड़ा नहीं होता है, इसलिए बछड़े की बात नहीं की धर्म ने, क्योंकि ये पृथ्वी देवी है। तो परिचय नहीं पूछा कि आप कौन, आप कौन हो, क्यों? जानते हैं कि ये पृथ्वी देवी है। तो फिर जानते हैं कि कौन है, तो परिचय नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन क्या पूछ रहे हैं, क्या हालचाल है, आप कैसे हैं? ये शिष्टाचार है कि आप कैसे हैं, आपका कुछ लग रहा है कि आपको कुछ तकलीफ है, आपको कुछ दुख है। सहानुभूति ये धर्म है व्यक्ति के अंदर जो है ना, ये धर्म होना चाहिए कि वो दूसरे से कुछ पूछे, सहानुभूति है ना। और कलयुग में धर्म, कलयुग में धर्म क्या, हरि नाम प्रचार। कि हर कोई जब दुखी है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है कि आप क्या दुखी हो, है कि नहीं? इसलिए कलयुग वाले युग धर्म हरि नाम कीर्तन, हरि नाम प्रचार है ना। तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या दुख है, और फिर अगर यही पूछते रहो तो तमाम दुख है तो फिर इसी में ही पूरा समय खराब हो जाएगा अपना दुख बताते बताते। इसलिए कलयुग में क्या है, हरे कृष्णा। वो ये नहीं पूछते हैं कि क्या समाचार है, हेलो, ये नहीं बोलते हैं, क्या, हरे कृष्णा, तुरंत ही हरे कृष्णा, मतलब बोलने से ही जो दुख दूर करे ऐसा शब्द जो है तुरंत ही निकालते हैं, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ये हरि बोल जो है ना, ये जो शब्द है हरि बोल, ये भी इसीलिए है। तो कलयुग में जो ना ये शब्द है, ये धर्म है, हर कोई जो ना एक दूसरे को हरे कृष्णा बोले, है ना। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन भी है, हरे कृष्ण आंदोलन का ही हरे कृष्ण, और आपस में भी हरे कृष्ण बोलना है, एक दूसरे का सम्मान करना हरे कृष्ण बोल करके। तो ये जो है ना शिष्टाचार है, धर्म का शिष्टाचार है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हरे कृष्ण आंदोलन का मतलब क्या हुआ? हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त भी अगर हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं एक दूसरे को, तो फिर हरे कृष्ण आंदोलन का मतलब क्या रहा? तो शिष्टाचार है ये। और कई बातों से प्रश्न कर रहे हैं। तो पहला तो उन्होंने प्रश्न किया है क्योंकि वो जो शोक में व्यथित है वो गाय नहीं बता पा रही है, तो ये सोच करके कि उनको जो है बताने में तकलीफ है, इसलिए वो स्वयं कई प्रकार की तकलीफों को पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये तकलीफ है, क्या आपको वो तकलीफ है ना। तो मेरे ख्याल से 5 प्रकार के जो है उन्होंने प्रश्न किए हैं कि क्या इस कारण से तुम दुखी हो, क्या उस कारण से दुखी हो, ऐसे पूछ रहे हैं। जैसे कि जब अर्जुन भी जो है दुखी थे, द्वारका से लौट करके आए, तो युधिष्ठिर को जो है चिंता थी कि कृष्ण जो है द्वारका में है या उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी है, तो इस बात को अर्जुन से वो पूछ नहीं पा रहे, उनको भी पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही है अर्जुन से, क्योंकि इतने कष्ट की बात है कि वे पूछ नहीं पा रहे हैं और अर्जुन बता नहीं पा रहे हैं। तो युधिष्ठिर भी अर्जुन से कई प्रश्न कर रहे हैं कि तुम दुखी हो, तुम उदास हो, क्या इस कारण से। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 20-25 प्रश्न पूछे हैं युधिष्ठिर ने अर्जुन से कि तुम दुखी हो, क्या इस कारण से दुखी हो, क्या उस कारण से दुखी हो, किसी अतिथि का सत्कार नहीं किया इसलिए तुम दुखी हो, या किसी ब्राह्मण को जो है आप में सम्मान नहीं दिया है इसलिए दुखी हो, जो शरण में आया है उसकी तुमने रक्षा नहीं की इसलिए तुम दुखी हो, तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो ये शिष्टाचार है। और धर्म ने जो है ना गाय को क्या संबोधन किया है, कोई बता सकता है धर्म ने गाय को क्या संबोधन किया है? अम्ब। अम्ब तो सबसे अंत में है और शुरू में भद्रे, भद्रे, भद्रे और अम्ब, अम्ब माने माता जी, भद्रे, भद्रे महोदया, अनुवाद है महोदया, तो ये संबोधन है। तो ये संबोधन है माता जी या भद्रे या देवी, हनुमान जी सीता जी को देवी बोलते हैं, देवी, लक्ष्मण जी भी सीता जी को देवी बोलते हैं, तो ये जो है संबोधन का है शब्द है। तो ये जो है धर्म है कि कोई व्यक्ति किसी से बात करे, कोई व्यक्ति किसी से पूछे, लेकिन कलयुग में किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है, सड़क में कोई व्यक्ति गिर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, सब निकलते जाते हैं तेजी से, कोई किसी को पूछता नहीं, किसी के पास समय नहीं है। घरों में भी जो है ना एक दूसरे से मिलते नहीं कोई, कलयुग में क्या है जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं है ना, तो एक घर का समाचार दूसरे घर को नहीं मिलता। समाचार अगर कुछ मिलता है कहीं का भी, चाहे दिल्ली का हो या दिल्ली से बाहर का, तो रेडियो से मिलता है या समाचार पत्रों से मिलता है, लेकिन अपने घर के बगल में दूसरे घर में कौन जन्मा है, कौन मरा है, इसकी भी सूचना नहीं मिलती। तो ये कलयुग का लक्षण है कि कोई किसी के घर नहीं जाता, ना कोई किसी को समाचार मिलता है। फिर दूरे बंधुम, बंधु दूर चले गए हैं, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? दूरे बंधुम, भगवान कृष्ण दूर चले गए हैं, जो पृथ्वी देवी के पति हैं भगवान, तो पृथ्वी देवी जो है भगवान की पत्नी बताई गई है, तो भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया है और अब अपने लीला समाप्त करके चले गए हैं, है ना। तो दूरे बंधुम का ये भी मतलब है, बंधु का मतलब पति भी होता है। तो धर्म ने जो है इस गाय से बछड़े के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि जानते हैं पृथ्वी देवी है तो बछड़ा नहीं होता पृथ्वी देवी के साथ में, जैसे कि पृथ्वी महाराज की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। तो जब पृथ्वी महाराज पृथ्वी को मार डालना चाहते थे और अपने धनुष में बाण चढ़ाया था उन्होंने, तो समय भी पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हुई थी, तो उस समय वो जो है कई तर्क दिए उसने कि आपको मारना उचित नहीं है मुझे, क्योंकि मैं गाय भी हूं, मैं स्त्री भी हूं, मैं डरी हुई हूं, मैं आपके शरणागत हूं, तो कई कारण दिए कि आपको मारना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जब पृथ्वी महाराज ने सब कारणों का उत्तर दिया कि नहीं, तेरा वध करना उचित है, ऐसी स्थिति में तेरा वध करना उचित है, क्योंकि तेरे दोष के कारण ही प्रजा जो है भोजन नहीं पा रही है, तुम भोजन नहीं दे रही है प्रजा को, और तुम यज्ञों का भाग भी ग्रहण कर रही है और तुम भोजन नहीं दे रही। तो पृथ्वी देवी ने फिर पूछा कि आप अगर मुझे मार डालोगे तो उससे क्या लाभ होगा, प्रजा कहाँ ठहरेगी। तो पृथ्वी महाराज कहते हैं कि तुझे मार करके मेरे तेरे शरीर के मेदे से मैं प्रजा का पेट भरूंगा और अपनी योग शक्ति से पूरी प्रजा को धारण करूंगा आकाश में ही। पृथ्वी महाराज के पास इतनी योग शक्ति थी। लेकिन फिर बाद में पृथ्वी देवी ने कहा कि आप सुनिए कि कारण क्या है कि मैं भोजन नहीं दे पा रही हूं प्रजा के लिए, क्योंकि पहले आपके पिता थे महाराज बेन जो दुष्ट थे, जिन्होंने सब यज्ञ बंद करवा दिए, पूरी पृथ्वी में यज्ञ दान तपस्या ये सब कार्य बंद करा दिए, तो जिस कारण से मैंने जो है जो अन्न के बीज अपने पेट में रख लिए थे, तो ये सोच करके रखे थे कि जब यज्ञ शुरू हो जाएंगे, लोग यज्ञ करने लगेंगे, तो फिर मैं अन्न उत्पन्न करूंगी। लेकिन बहुत समय तक यज्ञ नहीं हुए और मेरे पेट में वो अन्न पच गया, अब मैं उत्पन्न नहीं कर पा रही हूं, अब यज्ञ हो रहे हैं लेकिन मैं अन्न उत्पन्न नहीं कर पा रही हूं। लेकिन अब एक उपाय है कि आप अन्न के जितने बीज हैं वो प्राप्त कर सकते हैं मेरे शरीर से, कैसे, दोहन के द्वारा। जब गाय के शरीर में भोजन पच जाता है तो फिर दूध के रूप में वो आता है भोजन, तो वो जो अन्न है अब दूध के रूप में आप ले सकते हो मेरे से। नहीं, उसके लिए एक बछड़ा चाहिए, गाय बिना बछड़े के दूध नहीं दे सकती, तो एक बछड़ा चाहिए। अब आप किसी को बछड़ा बनाओ जिसके कारण मैं दूध दूंगी और अन्न जो है ना फिर पूरी प्रजा को मिलेगा। तो ये बात सच है कि गाय जो है ना बछड़े के बिना दूध नहीं देती, लेकिन दूध सबके लिए होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो बछड़े के बिना दूध नहीं देती है, लेकिन दूध सबके लिए होता है। जैसे कि भगवत गीता के महात्म्य में बताया गया है कि भगवत गीता भी क्या है, दूध है। तो कौन सी गायों का दूध है, 108 उपनिषद जो है ये 108 गौ में है, इनका जो है ना दूध इकट्ठा होकर के क्या बना है, भगवत गीता उपनिषदों का सार है, है ना। और तो दोहने वाले कौन है, दोहने वाले कौन है, भगवान कृष्ण है ना। दोग्धा गोपाल नंदना, तो भगवान तो प्रसिद्ध हैं गौ में दोहने वाले तो कृष्ण जो है ना महाभारत के युद्ध में भी अपना वही काम कर रहे हैं जो काम करते थे वृंदावन में, गौ में दोहते थे तो यहाँ भी गौ में दोह रहे हैं, इन गौ यहाँ पर दूसरी हैं। 108 उपनिषद जो है ना गौ में है और काम करते हैं वही दोहने का है। तो फिर बछड़ा कौन है, पार्थो वत्सा अर्जुन बछड़े हैं, सुधीर भोक्ता, और जिनकी अच्छी बुद्धि है, अच्छा दिमाग वाला, अच्छे दिमाग वाले जो लोग हैं वो इस दूध को पीने वाले हैं। तो बछड़ा इतना दूध नहीं पी सकता है जितना गाय दूध देती है, तो दूध तो सब लोग पीते हैं लेकिन बछड़े के कारण ही गाय दूध देती है, ये बात निश्चित है। तो फिर आपको पता है कि पृथ्वी महाराज ने फिर किसको बछड़ा बनाया था, किसको बछड़ा बनाया था, स्वयंभू मनु को। हाँ, अलग अलग प्रकार के दूध के लिए अलग अलग बछड़ों को नियुक्त किया गया था, तो जो अन्न के रूप में जो मतलब दूध लिया था पृथ्वी महाराज ने, तो एक विशेष पात्र और एक विशेष बछड़ा उन्होंने प्रयोग किया था। तो बछड़ा किसको बनाया, स्वयंभू मनु को, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ के पात्र में वो दूध लिया, अन्न रूपी जो दूध है अपने हाथ के पात्र में प्राप्त किया था। तो इस तरह से जो है हमें कुछ बातें पता चलती हैं। और एक और भी घटना है पृथ्वी देवी के बारे में, कि पृथ्वी देवी अक्सर तो गाय के रूप में प्रकट होती हैं, लेकिन कभी पृथ्वी देवी अपने साक्षात रूप में भी प्रकट होती हैं। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब सीता जी की परीक्षा हुई, बल्कि सीता जी ने स्वयं अपनी जब परीक्षा दी तो क्या हुआ, जब सीता जी का वनवास हुआ था तो उसके बाद फिर सीता जी को दो पुत्र पैदा हुए, लव और कुश। और फिर लव और कुश जो है भगवान राम से मिलते हैं और फिर परिचय होता है। फिर वाल्मीकि मुनि सीता जी को राम के सामने लाते हैं और भगवान राम चाहते हैं कि पूरी जनता के बीच में सीता जी अपनी शुद्धता का प्रमाण दें। तो उस समय सीता जी क्या कहती हैं, पृथ्वी देवी से प्रार्थना करती हैं, क्या कहती हैं, इसमें लिखा है, उस समय सीता जी तपस्विनियों के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी। तपस्विनी स्त्री गेरुआ वस्त्र धारण करती है, सीता जी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी, सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े दृष्टि और मुख को नीचे किए हुए बोली, सर्वान समागतान दृष्ट्वा सीता का साये वासिनी अम्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम अधो दृष्टिर्वाङ्मुखी। अब क्या कहती हैं, पृथ्वी देवी से कहती हैं, नीची दृष्टि करके यानी नीचे की ओर देख रही हैं, पृथ्वी देवी से बात कर रही हैं सीता जी। तो क्या कहती हैं, मैं श्री रघुनाथ जी की सेवा दूसरे किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती, स्पर्श तो दूर रहा, मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यथाहम राघवादन्यम मनसापि न चिंतये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। फिर दूसरी बात, यदि मैं मन वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूं तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। तीसरी बात, भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती, मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। जैसे तन सत्य मुक्तम में वेद मेरा मात परम न तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। तीन बार कहा, वही शब्द तीन बार दोहराया, तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। माधवी देवी यानी पृथ्वी देवी, विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से क्या हुआ, एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ, जमीन के अंदर से निकला अद्भुत सिंहासन निकला जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। देखो पृथ्वी देवी सिंहासन पर बैठी है, जब कष्ट में होती तो गाय का रूप धारण करती हैं। कृष्ण अवतार में भी ऐसा ही हुआ कि पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके आई ब्रह्मा जी के पास और अपना कष्ट सुनाया, लेकिन जब अपनी स्वाभाविक स्थिति में होती हैं तो स्त्री का रूप धारण करके आई। तो सिंहासन प्रकट हुआ जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। तथा सपंत्याम वैदेहम प्रादुरासे तदनभुतम भूतलादुत्थितम दिव्यम सिंहासनम मनोत्तमम। अब उस सिंहासन को नीचे कौन धारण किए हुए हैं, दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। सिंहासन को जो है जो नाग है वो धारण किए हुए हैं। धीमान शिरोभिस्तुम नागे रमित विक्रम दिव्यम दिव्य वपुषा दिव्य रत्न विभूषित। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपने दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया। तो सीता जी जहां खड़ी थी वहीं पर निकला सिंहासन, और इतने निकट निकला कि सीता जी को गोद में वो तुरंत भी ले सकती थी, मतलब बैठे बैठे ही अपने सिंहासन में बैठे बैठे ही सीता जी को गोद में ले लिया उन्होंने, मतलब सिंहासन दूर नहीं था, वो जमीन के अंदर से निकला सिंहासन, जहां पर थी वहीं से ही निकला और तुरंत उन्होंने सीता जी को गोद में ले लिया, दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। तस्मिन् स्तु धरणी देवी बाहोभ्याम गृह मैथिली स्वागते नाभिनंदेनम आसने चोपवेशयन। तो पृथ्वी देवी सीता की माता हैं और सीता को भूमिपुत्री भी कहा जाता है। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी, उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा, फिर तो आकाश में उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। तामासन गताम दृष्ट्वा प्रविशंतीम रसातलम पुष्प वृष्टि रविच्छिन्ना दिव्या सीताम अवाकिरत। देवताओं के मुख से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। साधुकारश्च सुमहान देवानां सहसोत्थितः साधु साधुति वै सीते यस्यास्ते शीलमीदृशम्। सीता का रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्न चित्त हो इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। एवं बहुविधा वाचो ह्यंतरिक्ष गतासुनाम व्याज हृष्ट मनसो दृष्ट्वा सीता प्रवेशनम। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरेश यानी राजा भी आश्चर्य से भर गए। यज्ञ वाटे गताश्चापी मुनिया सर्व एव ते राजानश्च नर व्याघ्रा विस्मयान्नोपरे मिरे। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी और पाताल में जो दानव हैं और नागराज भी आश्चर्यचकित होठे। अंतरिक्षे च भूमौ च सर्वे स्थावर जंगमा दानवाश्च महाकाया पाताले पन्नगाधिपाम। कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगे और कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी की ओर निहारने लगे। केचिन विने दो संग्रिष्टा केचिन ध्यान परायण केचिन रामम निरीक्षन्ते केचित सीताम अचेतसः। सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहां आए हुए सब लोग हर्ष शोक आदि में डूब गए। दो घड़ी तक वहां का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। दो घड़ी का मतलब 48 मिनट। 48 मिनट तक तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब चकित हो रहे हैं या प्रसन्न हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। सीता प्रवेशनम दृष्ट्वा तेषां आसीन समागमः तन्मुहूर्तम इवात्यर्थम समम सम्मोहितम जगन्। तो इस तरह से आज के श्लोक पर हमने ये सब चर्चा की है। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा? इनका प्रश्न है कि आधि और व्याधि से सुरक्षित रहने का साधन क्या है? व्याधि जो है ये शरीर का आवश्यक सिद्धांत है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो जन्म मरण बुढ़ापा और बीमारी इसमें दुख दोष देखना तो ये ज्ञान है। कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं व्याधि नहीं रहेगी तो व्याधि तो है, जन्म मरण के साथ व्याधि भी है, निश्चित है व्याधि। लेकिन फिर भी कई जो है ना सावधानियां होती हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए, है ना। इसमें से एक जो है ना नियम यह भी है, सवेरे उठना, प्रातःकाल उठना, ये भी जो है स्वस्थ रहने का एक उपाय है, जो कि आरोग्य वर्धक। सात्विक भोजन भी भगवान ने बदलाया है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीतिर विवर्धना। भोजन सात्विक भोजन होता है कैसा? आयु वर्धक, बलवर्धक, आरोग्यवर्धक है ना, तो ये सात्विक भोजन है, तो सात्विक भोजन करना चाहिए, आरोग्य को दूर करने वाला, मतलब रोगों को दूर करे, है ना। और भी चरणामृत का भी जो ना सेवन, इसको भी बताया जाता है, क्या मंत्र है चरणामृत का? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, सर्वव्याधि विनाशनम, तो सब प्रकार की व्याधियों को विनष्ट करता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप व्याधि मतलब रहेगी नहीं, कोई चरणामृत पीता है तो व्याधि नहीं रहेगी, लेकिन उसका अपना एक प्रभाव है कि जो रोगों को दूर करता है। लेकिन अगर कोई रोग जो है ना प्रबल है तो वो रहेगा, लेकिन चरणामृत का अपना प्रभाव है कि वो रोग दूर करता है, है ना। कृष्ण कथा श्रवण करना भी जो है ना सब प्रकार के रोगों को दूर करती है, इसका भी अपना एक प्रभाव है। इसका ये मतलब नहीं कि रोग नहीं रहेंगे, रोग रहेंगे, ये सबसे ज्यादा जो प्रबल उपाय है सब प्रकार के कष्टों से मुक्त होने का, वो क्या है कि आप देहात्म बुद्धि से ऊपर उठो। मैं शरीर हूं, शरीर में जितने हैं आपकी पहचान है उतना ज्यादा आपको जो है ना कष्ट होता है, मानसिक और शारीरिक। लेकिन जब कोई व्यक्ति शरीर और मन से ऊपर उठ जाता है तो फिर जो मानसिक कष्ट हैं और शारीरिक कष्ट हैं वो उसको बाधा नहीं डालते, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी का शरीर भी जो ना रोगग्रस्त था, लेकिन शरीर से ऊपर थे वो, इसीलिए जो ना कृष्ण चेतना कही जाती है, मतलब शारीरिक चेतना से ऊपर आप शुद्ध करते हैं चेतना को, तो कहाँ आते हैं कृष्ण चेतना में, है कि नहीं। कृष्ण भावना अमृत, ये अमृत है जो मृत्यु से भी ऊपर उठा देती है, तो जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी इन सबसे ऊपर उठा देती है कृष्ण भावनामृत, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इन सब चीजों से ज्यादा महत्व दिया जाता है कृष्ण भावनामृत को, कि आप बीमार हैं कैसे भी हैं लेकिन आप जो है मंगल आरती में भाग लीजिए, क्लास में भाग लीजिए, ये कारण कोई अच्छा कारण नहीं है कि बीमार हैं इसलिए मंगल आरती में नहीं आते। अगर आप जो है सब कुछ छोड़ करके आए हैं इस संघ में तो फिर कुछ तपस्या होनी चाहिए, और तपस्या का मतलब क्या है, आप यहाँ आकर के बैठ नहीं सकते हैं अगर, तो फिर क्या तपस्या रही, बीमार हैं कैसे भी हैं। अगर आप कमरे में हैं तो आप सोते हैं, है ना, और वो जो है ना सोना ये जो है ना क्या है, ये देह में पहचान बढ़ाता है। और ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः काल का समय है, इसमें जागने से आप जो है देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं, सत्वगुण, तो सत्वगुण है और वो तमोगुण है। तो अगर आप जो है ना अभ्यास करते हैं सवेरे उठने का, सवेरे स्नान करने का मंगल आरती में, तो आप जो है कृष्ण भावनामृत में उन्नति करते हैं, सत्वगुण में आते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्व इस चीज का है, ये नहीं हम लोगों का कि भाई व्याधि से कैसे दूर रहें, तो हम यही जो ना मतलब अलग से एक क्लास दें आपको कि भाई कैसे आप बीमारियों से दूर हों, नहीं तो इसमें कई कई जो है ना बातें हैं कि आप जो है ना बीमारियों से दूर रहें, और फिर कितनी कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, फिर इसका ही फिर अध्ययन करते रहो, है कि नहीं। तो बहुत से नुस्खे बताए जाते हैं, बहुत से नियम बताए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी नियम है वो क्या है, कृष्ण भावनामृत का। स्मर्तव्य शततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु किंकरा एति और न संशया। क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, उन सब का जो राजा है क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो क्या है, क्या करना है, जितने भी विधि हैं, ये करना ये करना ये करना, उन सब का राजा क्या है, हाँ हरि स्मर्तव्य शतम विष्णु, विष्णु का सदा स्मरण करना है ये, और क्या नहीं करना है, ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना, इन सब का राजा क्या है, क्या नहीं करना, विष्णु का स्मरण नहीं भूलना, विष्णु को भूलना नहीं। हालांकि एक ही बात है, हमेशा विष्णु का स्मरण करना और विष्णु को कभी नहीं भूलना एक ही बात है, एक ही बात को दो बातें बना करके उन्होंने बताया, किसने, रूप गोस्वामी ने बताया, रूप गोस्वामी ने बताया कि जितने भी निषेध बताए गए ये नहीं करो ये नहीं करो, उन सबका राजा क्या है? विष्णु का स्मरण मत भूलो, है ना। तो ये और कोई प्रश्न किसी का? हाँ धन्यवाद। इनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण पृथ्वी माता का भार उतारा तो अभी जो पाप हो रहे हैं तो वो फिर क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? पृथ्वी माता का भार उतारा भगवान ने जिस समय दुष्ट राजा लोग जो है ना पृथ्वी के भार बने हुए थे और असुर थे वो, तो उनको मरवा करके ये महाभारत का युद्ध भी करवा करके पृथ्वी का भार भगवान ने उतार दिया और फिर युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। इसके बाद फिर परीक्षित महाराज राजा बने और उन्होंने भी कलयुग को जो है दूर रखा। तो हजारों वर्ष तक जो है ना पृथ्वी में मतलब शांति रही और धर्म का जो है ना बोलबाला हुआ। और फिर व्यास जी ने जो है श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान को प्रकट कर दिया, है ना। तो कलयुग में जो हम श्रीमद् भागवत है कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी ऐसा है कलो नष्ट दृशा में पुराण और को धुनो दीता है। तो ये पुराण जो है ना श्रीमद् भागवत है, ये भगवान कृष्ण जब चले गए तो भगवान कृष्ण जो है ना श्रीमद् भागवत के रूप में फिर अवतरित हुए। तो जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं तो वो जो है बच सकते हैं, पापों से बच सकते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया, क्योंकि श्रीमद् भागवत से भी जो ना जब लोग दूर हो गए और इसका भी आश्रय लोग नहीं ले पा रहे हैं, इतने योग्य नहीं है कि श्रीमद् भागवत का भी आश्रय ले पाए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया। संकीर्तन है कि जनको, मतलब भगवान के नामों का कीर्तन। तो भगवान के नामों का कीर्तन तो ये भी फैल रहा है पूरे संसार में, है ना। तो इस तरह से पृथ्वी में जो पापों का भार है वो बढ़ नहीं पा रहा है, पाप भी बढ़ रहे हैं कलयुग में, पाप भी बढ़ रहे हैं जिस समय ऐसी स्थिति के पाप भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये धर्म भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस कारण से पृथ्वी जो है ना संतुलित है, आप समझे ना, इस कारण से पृथ्वी संतुलित है। तो प्रभुपाद जी को सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी के रक्षक हैं प्रभुपाद जी। तो इसी कारण से जो है ना ये तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ और विनाश नहीं हुआ, नहीं तो कितनी भविष्यवाणियां हुई हैं कि विनाश होना था। इसका जो रहस्य वो कौन जानता है, ये हरे कृष्ण आंदोलन ही जो है ना इस पृथ्वी की रक्षा कर रहा है, तो ये फैल रहा है। प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, तो ये आप जो है ना जो वितरण कर रहे हैं तो ये जो है ना रक्षा कर रही हैं पूरे संसार की। लोग इनको पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है इस प्रकार से जो है ना फैलाव हो रहा है, इसलिए रक्षा हो रही पृथ्वी की। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने कहा है कि जैसे सब प्रकार के वेद पढ़ लिए और यज्ञ कर लिए तो वही मेरा नाम ले सकता है। नहीं, कपिल भगवान ने नहीं कहा, माता देवहूति कह रही है कपिल भगवान से। माता देवहूति कपिल भगवान से ये प्रार्थना कर रही हैं। वो कैसा श्लोक है? अहोबत सुपुचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु ससुनार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। कि जो स्वपच है यानी कुत्ता खाने वाला चंडाल भी बहुत श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में तुम्हारा नाम रहता है, तो उसने सब प्रकार की तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिए, दान दे दिए, वेद पढ़ लिए, इसका मतलब यही है कि उसको सबका फल मिल गया, आप समझे ना। इसका दूसरे तरह से ये भी मतलब होता है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है तो उसने सब प्रकार के वेद पढ़ लिए, तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिए, क्योंकि इन सब का जो उद्देश्य है वो क्या है, यही है कि अगर अपराध से जो है ना मुक्त होकर कोई नाम लिए भगवान का, है ना, तो कोई व्यक्ति अपराध से मुक्त होकर के अगर नाम ले रहा है तो फिर जो है उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है ना जिसने नहीं किए हैं तो वो नाम नहीं ले सकता है, तो वो जो है ना बहुत भाग्यशाली है। जैसे भी हो कुछ उसके पहले के भी पुण्य हैं जिससे जो भगवान का नाम ले रहा है, जैसे अजामिल निरपराध जो नारायण नाम का उच्चारण कर सका, तो उसके पीछे कुछ कारण और भी था कि उसने बचपन में या जवानी में सच्चे दिल से भगवान की पूजा की थी, इसलिए हुआ कि अपराध नहीं हुआ, उसने भगवान का नाम लिया ना। तो अपराधों से किसी प्रकार से बचना चाहिए, जैसे भी हो। तो कोई व्यक्ति अपराधों से बच पाता है इसलिए अपने जो ना उसने जितनी तपस्या की है, यज्ञ किए हैं, इस कारण से भी ना? और फिर आप अपने प्रयास से भी आप बचो। तो जैसे भी हो आपको बचना है, अपराधों से बचना है। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, धर्म देवता माता पृथ्वी से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उससे प्रभुपाद जी कलयुग में बताते हैं कि तीन चीजें जो है ना, तीन प्रकार के जो है ना कष्ट हैं या समझी असुविधाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? आधी, सबसे पहला है कि हर व्यक्ति जो ना चिंतित है, कलयुग जो ना हर व्यक्ति के दिमाग में चिंता पैदा करता है ना। और दूसरा लक्षण क्या है कलयुग का? दूरे बंधु, हाँ, घर परिवार सब जो ना दूर दूर हो जाता है। एक परिवार में एक लड़का है वो कलकत्ता में है, दूसरा लड़का बंबई में है, तीसरा लड़का नागपुर में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई इधर नौकरी कर रहा है, कोई इधर नौकरी कर रहा है, ये है, और अमेरिका में है। और तीसरा लक्षण क्या कलयुग का? हाँ, शोक, हाँ, या जो ना विशेष चिंता अपनी आजीविका की, जीवन निर्वाह की चिंता, विशेष चिंता होती है। जिनके पास बहुत धन है तो उनको भी चिंता होती है। क्या चिंता होती है? उनकी अगली पीढ़ी के लिए, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, 10 पीढ़ियों के बाद क्या होगा। तो कलयुग चिंता पैदा करता है बिना मतलब में चिंता पैदा करता है। जैसे गधा, गधे को चिंता होती है कि मुझे कैसे भोजन मिलेगा, जबकि इतनी घास है ना, तो वो काम करता है दिन भर और सोचता है मुझे तब भोजन, मुझे इसलिए भोजन मिला है, मुझे इसलिए घास खाने को मिल रही है क्योंकि मैं इतना काम कर रहा हूँ। तो कलयुग जो ना इस प्रकार की चिंता पैदा करता है। तो कलयुग हर व्यक्ति को गधा बना देता है ना। लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन में जो भक्त हैं वो बिना किसी चिंता के उनको बना बनाए भोजन मिलता है, प्रसाद मिलता है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री गौणदाय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। 7 मार्च 1976 को प्रभुपाद ने मायापुर में प्रवचन दिया और कहा कि कृष्ण के सेवक की सेवा करना साक्षात कृष्ण की सेवा से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कृष्ण का सेवक कह देता है कुछ, अगर कृष्ण का सेवक कहता है कि मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा तो आप अवश्य ही जाओगे। 8 मार्च 1972 को प्रभुपाद ने कलकत्ता में प्रवचन दिया और कहा कि मंदिर का अर्थ है कि लोग आए और लोग भगवत विज्ञान को समझें। ऐसा नहीं है कि मंदिर का व्यापार किया जाए, मंदिर का मतलब है आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र। लोग आए और आध्यात्मिक जीवन क्या है इसको सीखें, भगवान क्या है और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है इसको सीखें। 9 मार्च 1972 को प्रभुपाद ने कलकत्ता में प्रवचन दिया और कहा कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपने पक्षी को खेतों में ले जाता है और उसको पिंजरे से बाहर निकाल देता है। पक्षी बाहर आता है और फिर से पिंजरे के अंदर घुस जाता है। तो ये मनुष्य का जो जीवन है उसी प्रकार से है जैसे कि पिंजरे से बाहर निकालना। और अब आपको अवसर प्राप्त है कि आप उड़ जाओ इस पिंजरे से जो जन्म मृत्यु का पिंजरा है, परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं, हम फिर से उसमें घुस जाते हैं और हमारी कोई रुचि नहीं है कि कैसे इस पिंजरे से बाहर निकलें और हम बार बार इसी पिंजरे के अंदर घुस जाते हैं। 10 मार्च 1975 को प्रभुपाद ने लंदन में प्रवचन दिया और कहा कि इस कलयुग में असुरों को मारने का अर्थ है उनके आसुरी कार्यों को रोकना कीर्तन के द्वारा, हरि संकीर्तन के अस्त्र द्वारा जिसे भगवान चैतन्य के पार्षदों ने फैलाया है। 11 मार्च 1972 को प्रभुपाद ने वृंदावन में प्रवचन दिया और कहा कि शिष्य का ये कर्तव्य है कि यहाँ तक कि अगर जो गुरु हैं
ये सीनियर आचार्य हैं, अगर वो स्वीकार कर लेते हैं अपनी पराजय को, तो भी शिष्य का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि उनके गुरु या जो उनके सुपीरियर हैं वो पराजित नहीं होते।
कृष्ण हरे।